हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। धृति, तुम नाराज हो मुझसे? इस वक्त धृति और माधुरी दोनों बाहर लॉन में बैठे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी। सारा दिन रायजादा निवास में महफिल जमी थी और आज घर जैसे जी उठा था। हमेशा सन्नाटा और वीरान रहने वाले घर में आज खूब रौनक जमी थी। माधुरी और कबीर भी रुक गए थे, पर अब दोनों को जाना था और जाने से पहले माधुरी धृति से बात करने यहाँ आई थी, क्योंकि सुबह से ही उसे धृति कुछ उदास और परेशान सी लग रही थी, पर उससे बात करने का उसे मौका नहीं मिला था। इस वक्त बाकी लोग अंदर थे, जबकि वो दोनों उनमें शामिल नहीं थे। धृति खुद में ही खोई सुनी निगाहों से एकटक आकाश को ताक रही थी और उसके बगल में बैठी माधुरी उसके चेहरे को देखते हुए उसके मन को पढ़ने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। पर जब कुछ समझ नहीं आया तो धृति की खामोशी का उसने यही अंदाज़ा लगाया था। उसका सवाल सुनकर धृति ने सर घुमाकर उसे देखा और हौले से मुस्कुरा दी। नहीं तो मैं क्यों तुमसे नाराज होंगी? नहीं हो तो होना चाहिए, क्योंकि हम दोस्त हैं और मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, माधुरी ने गंभीरता से कहा और गहरी निगाहें धृति के चेहरे पर टिका दीं, मानो जानने की कोशिश कर रही हो कि धृति सच में उससे नाराज है या नहीं। माधुरी की बात सुनकर धृति ने सहजता से जवाब दिया, हम दोस्त हैं, पर मैंने भी तो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सी बातें तुम्हें नहीं बताई, जबकि तुमने काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी मेरे सामने खोल कर रख दी थी, और ये बात छुपाने के पीछे भी वजह थी। मिस्टर सिंह मुझसे नफ़रत करते थे, कबीर उनके दोस्त हैं और वो भी मेरे बारे में वैसी ही सोच रखते थे, और तुम मुझसे दोस्ती कर चुकी थी। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे ये बात बताना मुश्किल रहा होगा, और क्यों तुमने ये बात मुझसे छुपाई होगी, इसलिए मैं ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ। बस एक सवाल है मेरे मन में कि जब तुम्हारा मंगेतर मेरे खिलाफ़ था, मिस्टर रायजादा भी मुझे गलत समझते थे, तो तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? क्योंकि मैं कबीर नहीं हूँ धृति। सबसे पहली बात तो ये कि मैं उन दोनों के नफ़रत और गुस्से की वजह जानती ही नहीं थी, पर मुझे विश्वास था कि तुम दोषी नहीं हो सकती और जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम उसके लायक नहीं हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे पास आँखें हैं जो सच्चाई को पहचानना जानती हैं। तुम्हारी आँखों में तुम्हारी सच्चाई झलकती है और चेहरे पर मासूमियत। तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, ये मेरा विश्वास था, और जितना मैं तुम्हें जानती गई मेरा विश्वास और दृढ़ होता चला गया। मैंने कबीर को भी बहुत बार समझाने की कोशिश की कि तुम गलत नहीं हो सकती, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, पर उसने एक बार भी मुझ पर और मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण हमारे बीच कई बार बहस हुई, और यही वजह थी कि मैंने तुमसे हमारे रिश्ते को छुपाया। तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मेरे दिल ने कह दिया था कि तुम निर्दोष हो। अर्नव और मेरी शुरू से बनती नहीं थी, उसका गुस्सा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था और तुम्हारे मामले में वो जल्लाद बन गया था, इसलिए मैंने उससे बातचीत ही बंद कर दी थी। पर मैंने कितनी ही बार कबीर को समझाने की कोशिश की थी कि एक बार अपनी आंख पर बंधी नफ़रत और गुस्से की पट्टी को खोलकर सच और झूठ में फ़र्क करने की कोशिश करे, लेकिन कबीर ने भी मेरी नहीं सुनी। मैंने उन्हें यहाँ तक कहा था कि जब सच सामने आएगा तो दोनों को बहुत पछतावा होगा, और आज वो पछता रहे हैं। मेरा विश्वास जीत गया और तुम बेगुनाह साबित हो गई। माधुरी आखिरी बात बोलते हुए मुस्कुरा दी, आखिर उसका विश्वास जीता था। धृति पर लगे सभी इल्ज़ाम मिट चुके थे, इसलिए वो खुश थी। धृति जो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, उसके विचलित निगाहों से उसे देखा और परेशान सी बोली, मेरे लिए तुम कबीर से लड़ी? धृति का सवाल सुनकर माधुरी ने बेहद गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, तो वो गलत था और मैं गलत का कभी साथ नहीं देती। मैंने तो उसे यहाँ तक कह दिया था कि वो और अर्नव दोनों बहुत गलत कर रहे हैं। जितना अर्नव गुनाहगार है उतना ही बड़ा दोषी वो भी होगा, इसलिए जब सच्चाई सामने आएगी और तुम निर्दोष साबित हो जाओगी तो जो सज़ा अर्नव को मिलेगी वही उसे भी भुगतनी होगी, और मैं आज भी अपने इस फैसले पर अड़ी हूँ। पर तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम परेशान क्यों थी? माधुरी ने आखिर में उससे जो सवाल किया उसे सुनकर धृति के चेहरे पर चिंता और परेशानी के बादल छा गए। मैं यहाँ अब और नहीं रहना चाहती, पर उनकी फैमिली आ गई है, उनके सामने मुझे नाटक करना होगा। उनकी एक आदर्श पत्नी बनने का, जो उनसे प्यार करती है, उनका ख्याल रखती है और खुश है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब जब उनसे जाने की बात करती हूँ वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, पर मुझे जाने नहीं देते, और अब तो हालात और बिगड़ गए हैं। मैं सबको धोखा नहीं देना चाहती पर मजबूर हूँ, और जाना चाहती हूँ पर वो मुझे जाने नहीं देते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ध्रिकी एकदम मायूस और उदास हो गई। उसकी बात सुनकर माधुरी ने कुछ पल सोचने के बाद सवाल किया, अर्णव ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए? नहीं, कहती हूँ तो बात टाल देते हैं। वो डिवोर्स देने को ही तैयार नहीं। मैं जानती हूँ वो ये सब सिर्फ मुझे यहाँ रोकने के लिए कर रहे हैं, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। और जब यही बात मैं उनसे कहती हूँ तो 100 बहाने सुनाते हैं मुझे, जिससे मुझे वही सही लगने लगते हैं। धृति, तुम श्योर हो कि तुम अर्णव के साथ नहीं रहना चाहती? देखो, मैं जानती हूँ कि अर्णव ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, और उसे भुलाना आसान नहीं, पर उसे अपनी गलतियों का एहसास है और सच्चे दिल से प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा है। अब तो सबको तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। उसकी फैमिली ने भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। क्या तुम सब भुलाकर एक नई तरह से इस रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती? अर्णव को एक मौका नहीं दे सकती? क्या सच में तुम डिवोर्स देकर उससे दूर जाना चाहती हो? माधुरी ने एक कोशिश की थी धृति का मन टटोलने की, और अपनी फिंगर्स को क्रॉस किए बड़ी ही उम्मीद से उसे देख रही थी, जबकि धृति उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी, जैसे अपने फैसले पर पुनः विचार कर रही हो। नहीं, मैं वो सब नहीं भुला सकती। मुझे उनके साथ नहीं रहना। मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और सोचा है कि जाओगी कहाँ? नहीं, अभी नहीं सोचा, पर इतनी बड़ी दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ी जगह मुझे भी मिल ही जाएगी, जहाँ मैं सुकून से अपनी आगे की जिंदगी बिता सकूँ। तुम जो भी फैसला लोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। धृति, तुम जहाँ जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, माधुरी ने उसकी हथेली को थामते हुए संजीदगी से कहा। उसकी शुरू की बात सुनकर जहाँ धृति फीका सा मुस्कुरा दी थी, वहीं आखिरी की बात सुनकर बुरी तरह से चौंक गई। ये क्या कह रही हो तुम? तुम मेरे साथ कैसे जा सकती हो? तुम्हारा रिश्ता कबीर से जुड़ा है, मेरे वजह से तुम क्यों उससे दूर जाकर अपनी जिंदगी और खुशियों को बर्बाद करोगी? क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और मैंने ये फैसला बहुत पहले कर लिया था कि जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा, और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट हो और ये दुनिया उतनी ही शातिर। तुम्हें अकेला छोड़ने का खतरा मैं नहीं उठा सकती। पर कबीर और तुम्हारे रिश्ते का क्या होगा माधुरी? मेरे कारण तुम्हें इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रखूंगी और वादा करती हूँ कि जब भी जाऊंगी तुम्हें बता कर जाऊंगी, और जहाँ भी रहूंगी तुमसे कॉन्टैक्ट में रहूंगी। बस तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। माधुरी ने धृति को बहुत समझाने की कोशिश की, पर धृति अपनी बात पर अड़ी रही, और आखिर में बहस इसी बात पर खत्म हुई कि आगे का आगे देखेंगे। कुछ देर में सबने साथ में डिनर किया, फिर माधुरी और कबीर निकल गए। रास्ते में कबीर ने माधुरी से शादी के बारे में बात करने की कोशिश भी की, पर उसने उसकी बात को सिरे से नकार दिया। कबीर अपना इतना समूह लेकर रह गया।
दूसरी तरफ धृति को कुछ देर दादा दादी ने अपने पास बिठाए रखा। उसे अर्णव के बचपन के किस्से सुनाते रहे, फिर धृति को कमरे में भेज दिया। जब धृति कमरे में आई तब अर्णव बैठ के अपने साइड वाले हिस्से पर लैपटॉप लेकर बैठा काम कर रहा था। धृति ने एक नज़र उसे देखा, फिर कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। मिस्टर रायजादा, कुछ देर बेड पर बैठी नज़रें घुमाने के बाद उसने सकुचाते हुए अर्णव को पुकारा था, और अर्णव ने भी निगाहें घुमाकर गहरी नज़रों से उसे देखते हुए भारी आवाज़ में कहा, टू बी कंटिन्यूड।